कौन है जिसने आस्तिक रायचंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की हिम्मत की है? आस्तिक ने गुस्से में उन पुलिस वालों को देखते हुए सवाल किया, तो वो दोनों एक साथ आस्तिक को देखते हुए उनमें से एक कहता है, मिस्टर दिलीप मल्होत्रा। ये नाम सुनकर आस्तिक का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। उसका मूड पहले ही खराब था और वो अपने गुस्से पर वैसे भी काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन मल्होत्रा का नाम सुनकर तो उसका रहा सहा कसर भी जवाब दे जाता है। वो गुस्से में दांत पीसते हुए उन दोनों को देखता है। पुलिस वाले आस्तिक को देखते हुए कहते हैं, उनका दावा है कि आपने उनके बेटे के ऊपर जानलेवा हमला किया है और उसे इतना मारा है कि वो कोमा में भी जा सकता है। ये सुनकर आस्तिक के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो अपना ग्लास हवा में ऊपर उठाते हुए हंसते हुए कहता है, वेल डन ऑफिसर, काफी अच्छी खबर सुनाई है तुमने मुझे, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। मैं चाहता था कि वो मर जाए, कोमा उसके लिए बहुत छोटी सजा होगी। क्या कहते हो ऑफिसर, अगली बार उसे जान से मार डालूं? आस्तिक बेफिक्र होकर ये सब कहे जा रहा था और वो दोनों ऑफिसर उसकी बात सुनकर एकदम दंग रह गए थे। एक ने कहा, प्लीज मिस्टर रायचंद, आप हमारे साथ चलिए। आस्तिक के लिए उन दोनों को वहां से निकालना या फिर इस केस को यहीं रफा दफा करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज उसका दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था। ऊपर से उसका मूड भी बहुत खराब था। क्या सोचकर उसने अपनी आखिरी ड्रिंक को भी खत्म किया और उन दोनों के साथ वो पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद आस्तिक पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जब उसने स्टेशन के अंदर कदम रखा तो सारे पुलिस वाले एकदम से डर जाते हैं, लेकिन कमिश्नर के सामने बैठा हुआ सूर्य मल्होत्रा का बाप उसके चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो आस्तिक को देखता है और लगभग चिल्लाते हुए कहता है, कमिश्नर साहब, यही है वो कमीना जिसने मेरे बेटे पर जानलेवा हमला किया था, और गवाह के रूप में मैं वहीं मौजूद था, इसलिए मेरे बेटे को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो कोमा में भी जा सकता है, इसे गिरफ्तार करो। आस्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वो हंसते हुए कहता है, शांत हो जाओ मिस्टर मल्होत्रा, क्यों कुत्तों की तरह भौंक रहे हो? मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आस्तिक को देखते हैं। कमिश्नर साहब मिस्टर मल्होत्रा से कहते हैं, मिस्टर मल्होत्रा, अपने इमोशंस पर काबू रखिए, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर इस तरीके से हंगामा करना गैरकानूनी है, और अब मिस्टर रायचंद यहाँ आ ही गए हैं तो पुलिस स्टेशन के अंदर से कहीं भाग थोड़ी ना जाएंगे। आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए, मिस्टर रायचंद को भी हक है अपने बारे में सफाई देने का। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक वकील अंदर आता है। ये वकील मिस्टर पुष्कर रायचंद का बहुत ही भरोसेमंद और निजी वकील था, जो काफ़ी सालों से उनके लिए काम कर रहा था। आस्तिक जब क्लब से बाहर निकला तो उसने पुष्कर जी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया और पुष्कर जी ने कुछ ही सेकंड में अपने वकील को पुलिस स्टेशन भेज दिया। आस्तिक जानता था कि अगर पुष्कर जी को किसी चीज़ से नफरत है तो वो है उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलने का। वो कानूनी पचड़ों से दूर रहना चाहते थे। वकील अंदर आते ही उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, आप मेरे मुवक्किल को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है बिना सबूत के इन्हें हिरासत में रखने का। वकील साहब ने अपनी फाइल में से एक पेपर निकाला और उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं ऑफिसर, इन्होंने मिस्टर मल्होत्रा के बेटे पर हमला नहीं किया है। मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुर्सी पर लात मारते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो, मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और इस पागल आदमी ने उसे मारने की कोशिश की है, क्या सबूत है आपके पास? वकील ने उल्टा उनसे सवाल किया तो मिस्टर मल्होत्रा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वो गुस्से में रहते हैं, मैं वहीं मौजूद था और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस रूम का सीसीटीवी फुटेज, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा कि कैसे इस पागल और सिर्फ इंसान ने मेरे बेटे को लगभग जान से मारने की कोशिश की है। वकील ने अपनी दलील देते हुए कहा, आपकी बातों पर कानून यकीन नहीं करेगा क्योंकि आप अपने बेटे के पक्ष में ही बात करेंगे, इसीलिए आपका बयान बेबुनियाद है, और जहां तक बात रही सीसीटीवी फुटेज की, तो जब तक वो कोर्ट में सबमिट नहीं हो जाता है तब तक मेरे क्लाइंट को हिरासत में नहीं रख सकते हैं। अच्छा ऑफिसर, अब हम चलते हैं, आपकी वजह से वैसे ही मेरे क्लाइंट का काफी समय बर्बाद हुआ है, चलिए मिस्टर रायचंद। ऐसा कहते हुए वकील साहब ने आगे की तरफ हाथ बढ़ाया। आस्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, उसने भी अपनी आंखों से उन लोगों को देखा और मिस्टर मल्होत्रा को देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक शरारती लेकिन घमंड भरी मुस्कान थी। आस्तिक जानता था कि ये सब पुष्टा जी ने किया है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के साथ ही आस्तिक ने वकील साहब के कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाते हुए कहा, थैंक्स वकील साहब, आपने काफी मदद की। वकील मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मेरा काम था, वैसे भी आपके पिताजी चाहते थे कि इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए। क्या मतलब वकील साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? वकील साहब आस्तिक को देखते हुए बोले, आस्तिक, अभी की जो स्थिति है आप उसका सामना किस तरीके से कर रहे हैं ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप अपने पिता को भी जानते हैं, वो आपसे एक वारिस चाहते थे और आपकी वाइफ के एक्सीडेंट की खबर उन्हें मिल चुकी है, तो क्या उन्हें अभी की स्थिति के बारे में कुछ पता है? आस्तिक के चेहरे पर घबराहट आ गई, उसने जल्दी से कहा, नहीं, उन्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और आपको उन्हें बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं इस बारे में उनसे खुद बात करूंगा, ये एक्सीडेंट पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है, इस एक्सीडेंट का अरुणिमा से कोई लेना देना नहीं है।